ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಮೀರಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾರ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿಯು ಲೋಕ ಹಿತವ ಮಾಡಿದೆ ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಶಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ
ಪಂಚಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕಿ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ತಿರ್ಯಂಚಿ ಗತಿ ಕೆ 85 भेदों का पेज नंबर 4 में जो यह चार्ट दिया गया है वो भेदों को ज्ञात कराने के लिए है। इन्हीं भेदों को लेकर के अगला जो चार्ट आएगा उसमें इन भेदों वाले तिर्यंच प्राणी किस गुणस्थान में मरण करते हैं और चार गति में से कितने गतियों में किन परिणामों से जाते इसका यहां वर्णन है। त्रस्कायिक में वर्णन हो गया था त्रस्कायिक जीव कितने प्रकार के, दो प्रकार के, भोग भूमिज, कर्म भूमिज और भोग भूमिज, दो प्रकार के त्रस्कायिक जीव पाए जाते हैं। त्रस्कायिक पंचेंद्री की अपेक्षा से है, दो भूमि में रहते हैं, सौध्नी और असौध्नी। कर्म भूमि में ही केवल भेद करना चाहिए, भोग भूमि में भेद नहीं कर सकते क्योंकि वो भूमि में असंगी पंचेंद्री जीव नहीं होते। संगी पंचेंद्री जीव में भी दो भेद करना चाहिए, गर्भज और समूर्छन। गर्भज भी तीन जगह रहते हैं, रहने की अपेक्षा से गर्भज जीवों के तीन भेद हैं, जलचर, थलचर और नवचर। समूर्छन जीव भी तीन जगह रह सकते हैं, जलचर, थलचर और नवचर। जलचर यानी जल में रहने वाले, थलचर यानी भूमि पर रहने वाले और नवचर यानी आकाश में रहने वाले। नव कहते हैं आकाश को, नवचर। इसी प्रकार जैसे संगी पंचेंद्री में गर्भज और समूर्छन भेद किया है, असंगी जीव भी गर्भज और समूर्छन के भेद से दो प्रकार के होते हैं। यहाँ वैसे एक बात ध्यान रखना चाहिए कि असंगी कहने से एकेंद्री से लेकर पंचेंद्री असंगी जीव पर्यंत सभी मन न होने से सबको असंगी कहना चाहिए, ऐसा नहीं। असंगी कहने से केवल ये पंचेंद्रियों का ही भेद है, इसलिए असंगी पंचेंद्री कहने से पंचेंद्री ही ग्रहण करना चाहिए। एकेंद्री जीव को भी मन नहीं है तो उसको असंगी नहीं कहा जाएगा, है असंगी वो, परंतु फिर भी उसका कथन उसमें नहीं है। विकलेंद्री एकेंद्री है, स्थावर है, उनका नाम स्थावर है एक इंद्रियों को, और द्विइंद्रिय जीवों को भी मन नहीं होता, नहीं होता है, इसलिए उसको असंगी कहो, ऐसा नहीं, उसको असंगी नाम नहीं है, उसको विकलेंद्री कहना चाहिए या तो द्विइंद्रिय तीनिंद्रिय चतुरिंद्रिय कहना चाहिए, और एकेंद्रिय को भी एकेंद्रिय कहना चाहिए या तो स्थावर कहना चाहिए, ये नाम है। यहाँ असंगी कहने से देखो गर्भज और सम्मूर्छन दो भेद हो गए असंगी के, ऐसे दो भेद क्या एक विकलेंद्री में बनेंगे?
नहीं,
गर्भज और सम्मूर्छन
नहीं,
तो क्या भेद बनेंगे वहां? वो केवल सम्मूर्छन ही है, विकलेंद्री जीव केवल सम्मूर्छन ही होते हैं और एकेंद्री जीव भी केवल सम्मूर्छन ही होते हैं। जलचर थलचर और नवचर ये असंगी पंचेंद्रिय में भी तीन भेद हैं और सम्मूर्छन भी होते हैं इसमें। इस सम्मूर्छन में यानी असंगी पंचेंद्रिय सम्मूर्छन में तीन भेद जलचर थलचर नवचरों में तीन तीन भेद बनेंगे, पर्याप्तक निवृत्ति अपर्याप्तक लब्धि अपर्याप्तक। इस प्रकार यह चार्ट त्रिरंच जीवों के भेदों का है। भोगभूमि जो त्रिरंच हैं वो संगी ही होते हैं, इसलिए दो भेद नहीं हैं, और वे नियम से गर्भज ही होते हैं, इसलिए सम्मूर्छन जीवों का अभाव होता है। इसमें गर्भज की अपेक्षा से भोगभूमि में रहने वाले जीव जलचर वाले नहीं रहते, इसलिए इसके भी दो ही भेद हो गए, थलचर और नवचर, ये हो गया। अब इस पेज पर लिखा है नियम से सम्मूर्छन कहलाने वाले त्रिरंचों में स्थावर संबंधी सम्मूर्छन त्रिरंच 14 × 3, 14 कैसे 14 स्थान पर लिखे गए हैं, एक इंद्रिय जीव नंबर दिया है, सूक्ष्म और बादर के नीचे जो नंबर दिए गए हैं लगातार वो 14 है। इन 14 को 3 से क्यों गुणाकार किया? तो पर्याप्ति निर्वृत्ति अपर्याप्ति लब्धि अपर्याप्ति के भेद से तीन तीन प्रकार के जीव होते हैं, इसलिए गुणाकार करने पर 42 हो गए। एक इंद्रिय जीव 42 प्रकार के हैं। विकलेंद्री संबंधी सम्मूर्छन जीव त्रिरंच 9 प्रकार के होते हैं, सो चार्ट में बताया था 9 कैसे हो गए, इनके भी तीन तीन भेद हैं, तो 3 × 9 42 में 9 मिलाने पर 51 भेद हो गए जो एकेंद्री संबंधी और विकलेंद्री संबंधी होते हैं। कर्मभूमि संगी और असंगी पंचेंद्री सम्मूर्छन त्रिरंचों में 9 + 9 = 18 भेद समझना चाहिए। कर्मभूमि संगी और असंगी इसमें 9 कैसे?
संगी में
सम्मूर्छन कॉलम में पर्याप्तक निर्वृत्ति अपर्याप्तक लब्धि अपर्याप्तक ये जलचर थलचर और नवचर तीनों में है, इसलिए ये 9, और असंगी में भी सम्मूर्छन कॉलम में 9 हो गए, 9 × 9 = 18 भेद पंचेंद्रिय संबंधी सम्मूर्छनों के भेद हैं। कर्म भूमिज संगी और असंगी पंचेंद्रिय गर्भज त्रिरंचों में 6 भेद हैं, ये 12 हैं। कर्म भूमिज संगी और असंगी पंचेंद्रिय गर्भज, गर्भज के टोटल भेद कितने?
12।
कर्म भूमि संबंधी 12 हैं, भोग भूमि संबंधी गर्भज ये 4 हैं, क्योंकि वहां पर 2 ही भेद हैं, जलचरों का भेद नहीं है, थलचर और नवचर ये 2 भेद होने से 4 भेद हो गए। इस प्रकार टोटल कुल मिलाकर के त्रिरंच प्राणी 85 प्रकार के होते हैं, 85। सबसे ज्यादा भेद प्रभेद त्रिरंचों में है, मनुष्यों में नहीं, देवों में नहीं, त्रिरंशों में विविधता बहुत है। ज्ञातव्य, उपरोक्त सर्वभेदों में स्थावर और विकलेंद्रिय संबंधी 17 भेद केवल समूर्चन जीवों के होते हैं। ये 17 भेद सकलेंद्रिय भेदों में से समूर्चन भेद 6, इस प्रकार 17 + 6 23 भेद समूर्चन भेद कहलाते हैं। इन 23 समूर्चन भेदों को पर्याप्त और समूर्चन व अपर्याप्तक समूर्चन व अपर्याप्तक समूर्चन तथा लब्धि अपर्याप्तक समूर्चन के भेद से भेद कल्पना करने पर कुल 23 × 3 = 69 भेद समूर्चन त्रिरंशों के होते हैं तथा गर्भज संघी और असंघी जीवों के उपरोक्त 8 भेदों को पर्याप्तक और अपर्याप्तक की अपेक्षा से भेद कल्पना करने पर गर्भज जीवों के कुल 16 भेद होते हैं। इस प्रकार समूर्चन त्रिरंशों के कुल भेद 69 व गर्भज त्रिरंश प्राणियों के कुल भेद 16 को मिलाने पर सर्व त्रिरंशों के 85 भेद होते हैं। शेष विषय संदृष्टि क्रमांक 10 ए एवं बी तथा संदृष्टि क्रमांक 11, 12, 13 देखें। इसका अर्थिंग प्रॉब्लम कल हिलाया आप लोगों ने। ये संदृष्टि जानने योग्य है। संदृष्टि क्रमांक 10 पेज नंबर 55 पेज नंबर 50 आवाज नहीं चल रही है। नंबर नहीं आ गया किड़ी अपने नंबर अश्रद्धु ये लेता हूँ लेर जन्म भेदों के साथ अवस्था स्वामित्व एवं गुणस्थान शीर्षक कौन सा पेज नंबर निकाला? 55। जन्म भेदों के साथ अवस्था स्वामित्व एवं गुणस्थान जन्म के कुल भेद संसारी प्राणी 3 प्रकार से जन्मते हैं। नहीं जाओ
इधर का दूसरा मालूम है जाओ ना इधर के दूसरे नंबर का ठीक कर
अवस्था स्वामित्व एवं गुणस्थान मोटा हो रहा है
हमारा ध्यान
जन्म भेदों के साथ अवस्था स्वामित्व एवं गुणस्थान संसारी प्राणी के जन्म कितने प्रकार के होते मालूम? 3 ही प्रकार के हैं, ज्यादा नहीं। एक गर्भजन्म, समूर्चन जन्म और उपपाद जन्म। उपपाद जन्म किसका? देव और नारकियों का। समूर्चन जन्म किसका? मनुष्य और त्रिरंशों का। और गर्भ जन्म मनुष्य और त्रिरंशों का। त्रिरंशों में गर्भ जन्म कौन से त्रिरंशों का? सौधनी और असौधनी पंचेंद्रिय जीवों का गर्भ जन्म होता है। और मनुष्यों का गर्भ जन्म भी है और समूर्छन जन्म भी है। तो ऐसा कोई मनुष्य है क्या दुनिया में समूर्छन जन्म वाला? देखा
अपर्याप्त
दिखने में जो आ रहे हैं ये कौन से जन्म वाले हैं? ये पर्याप्त गर्भ जन्म वाले जो दिखने में आते हैं वो गर्भ जन्म वाले, जो दिखने में नहीं आते और मलमूत्र में पैदा होते रहते हैं, एक अंतर्मूर्त में कितने भो? आठ भो। उनको सम्मूर्छन मनुष्य कहते हैं। ठीक, सम्मूर्छन जन्म के तीन भेद हो गए। और सम्मूर्छन जन्म का स्वामित्व तो किस किस को है ये नीचे बताया है। सम्मूर्छन जन्म मनुष्य और त्रिरंचों को है स्वामित्व। केवल कर्म भूमिज मनुष्य ही सम्मूर्छन होते हैं। देखिए, भोग भूमि का निषेध हो गया और कुभोग भूमि का निषेध हो गया और म्लेच्छ खंडों का निषेध हो गया। देखो इतनी बातें ध्यान में रखना, म्लेच्छ खंड में सम्मूर्छन मनुष्य नहीं होते, कुभोग भूमि में नहीं होते, सुभोग भूमि में नहीं होते। कौन से मनुष्य? सम्मूर्छन मनुष्य। यहाँ पर नियम से गर्भज मनुष्य ही होते हैं, यानी पर्याप्तक ही होते हैं, अपर्याप्तक मनुष्य पाए नहीं जाते। नीचे लिखा है भोग भूमिज कुभोग भूमिज व म्लेच्छ खंडज मनुष्य व म्लेच्छ खंडज संगी असंगी पंचेंद्री अपर्याप्तक नहीं पर्याप्तक अपर्याप्तक सम्मूर्छन तिर्यंश व विकलत्रय पर्याप्तक अपर्याप्तक तिर्यंशों का सम्मूर्छन जन्म नहीं होता। संघी पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य उनका हमेशा गो यानी गुणस्थान एक ही होता है, उनको एक ही गुणस्थान, एक से ज्यादा गुणस्थान प्राप्त नहीं कर सकते। ये मनुष्यों का इतना ही, तिर्यंचों का विस्तार ज्यादा। तिर्यंच केवल कर्म भूमिज तिर्यंच, उनमें 850 म्लेच्छ खंडज तिर्यंच छोड़कर 170 कर्म भूमि के आर्य खंडज सर्व सम्मूर्छन तिर्यंच स्वामी हैं। किसको छोड़ दिया? देखो 850 म्लेच्छ खंडज तिर्यंच छोड़कर 170 कर्म भूमि के आर्य खंडज सर्व सम्मूर्छन तिर्यंच स्वामी हैं। स्वामी का मतलब सम्मूर्छन होने के अधिकारी, अर्थात सकलेंद्री और विकलेंद्री। इसके दो भेद हो गए। इसमें सकलेंद्री में संघी पंचेंद्री सम्मूर्छन तिर्यंच जलचर थलचर ब्रैकेट में लिखा है नवचर, उसको ब्रैकेट में क्यों लिखा है इसके लिए नीचे दिया गया है टिप्पणी में, वो जो चिन्ह दिया है गोल प्लस बनाकर गोल चिन्ह दिया है ना, वो उसका नीचे लिखा है। देखो क्या लिखा है वहां, नवचर ब्रैकेट में दिया है, तो ब्रैकेट का अर्थ वो है कि नवचर का आगम में उदाहरण नहीं मिलता। नवचर सकलेंद्री तिर्यंश कौन है उनका आगम में उल्लेख नहीं मिलता। प्लस संघी पंचेंद्री अपर्याप्तक सम्मूर्छन तिर्यंच, जो गर्भज होते हैं पक्षी वगैरह ये गर्भज हैं, सम्मूर्छन नहीं, परंतु पर्याप्तक हो और सम्मूर्छन हो ऐसे नवचर जीव मिलते नहीं। जैसे जलचर में तो मिलते हैं, राघव मत्स्य तंदुल मत्स्य आदि ये समूर्चन होकर पर्याप्त हैं और इनके मलमूत्र में अपर्याप्त संगी पंचेंद्री त्रेंच पाए जाते हैं। जलचर में तो है पर्याप्त समूर्चन भी है अपर्याप्त समूर्चन भी है, किंतु नवचर में कौन है उदाहरण नहीं मिलता। जितने ये उड़ने वाले पक्षी हैं संगी पंचेंद्री अवश्य हैं, ये सभी संगी पंचेंद्री अवश्य हैं, किंतु उड़ने वाले भी हो और समूर्चन हो ऐसे कौन पक्षी हैं? मिलता है? और जल में रहने वाले हो और चलने वाले हो, दिखते हो, जिनका शरीर पूर्ण हो गया हो, ऐसे समूर्चन हो और संगी पंचेंद्री हो, ऐसे जीव मिलते हैं। जैसे राघव मत्स्य आदि, इनको क्या कहते हैं? संगी पंचेंद्री समूर्चन पर्याप्तक त्रिरेंच, ये पर्याप्तक हैं। पर्याप्तक त्रिरेंच ही आंखों से दिखते हैं हम लोगों को, अपर्याप्तक हो तो बहुत जल्दी मरते हैं। तो अपर्याप्तक का प्रश्न ही नहीं, पर्याप्तक त्रियंश जैसे जल में मिलता है समूर्चन है पर्याप्तक है, वैसे नवचर में कौन सा है? हाँ, नहीं मिलता, इसलिए टिप्पणी दिया है। न को ब्राकेट में रखकर नीचे टिप्पणी में ये कहा गया है कि यह आगम में कोई उनका उदाहरण नहीं मिलता, यदि मिलता भी हो तो उनकी जाति लुप्त हो गई हो। केवली भगवान ने नवचर में भी पर्याप्त त्रिरेंच है ये तो कहा है, आगम में तो आ रहा है, उसके तीन भेद बताए गए हैं, जलचर थलचर नवचर, तो नवचर का भी बताया है, किंतु नवचर का उदाहरण मिलता नहीं है। वो तो पर्याप्त है, गर्भज है, राजहंस पक्षी गर अंडे से उत्पन्न हुआ है, जो अंडे से उत्पन्न होता है वो गर्भज कहलाता है और जो बड़ा होता है दिखता है वो पर्याप्त कहलाता है, पर समूर्चन नहीं है ना, वो राजहंस पक्षी गर्भज है। समूर्चन वाला पक्षी कोई हो तो ऐसा उदाहरण दो, देखेंगे चिंतन करके आपके ज्ञान में आ जाए। एक पक्षी को ढूंढो जो समूर्चन भी हो और पर्याप्तक भी हो,
दिखाई देगा तो पर्याप्त होगा ही।
हाँ,
दिखाई देगा तो पर्याप्त होगा।
हाँ, दिखाई देगा तो पर्याप्त होगा ही, लेकिन समूर्चन होना चाहिए, गर्भज नहीं चाहिए। गर्भज नहीं चाहिए, समूर्चन को ढूंढो।
मैंने सुना है, पढ़ा नहीं है, भोग में जन्म लेने वाले मनुष्य जिनका शरीर हाथी सिंह जैसा होता है, लेकिन वो ही समूर्चन जन्म लेते हैं?
नहीं नहीं, गर्भज जन्म होता है, गर्भ जन्म होता है, इसी में आएगा, इसी ग्रंथ में आएगा, भोग भूमि जी का भी आएगा नीचे, अभी चर्चा होगी। भोग भूमि में सभी जीव केवल गर्भज ही होते हैं, समूर्चनों का अभाव, अभी तो भेद पढ़ करके आए अपन। तो यहां उनके गुणस्थान दिए गए हैं, चौकट में जो दिया है ना, ये तो हेडिंग हो गया, जो काला बिंदु दे करके नाम दिया गया वो त्रिरेंचों का नाम है, संगी पंचेंद्री पर्याप्तक समूर्चन त्रिरेंच, जलचर थलचर नवचर। जलचर और थलचर मिलने से उसको ब्राकेट नहीं दिया है, नवचर नहीं मिलता है इसलिए ब्राकेट दे करके नीचे टिप्पणी दिया है। संघी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक समूर्छन तिर्यंज। अपर्याप्तक समूर्छन तिर्यंज तो तीनों प्रकार के पाए जाते हैं, मिलते भी हैं, जैसे पक्षियों के मल मूत्र में होने वाले संघी पंचेंद्रिय पक्षी, संघी पंचेंद्रिय समूर्छन अपर्याप्तक पक्षी
हो सकते हैं,
लेकिन पर्याप्तक पक्षी को पकड़ो वो नहीं मिल रहा है। आगे नीचे एक यानी पहले नंबर का पर्याप्तक भेद थे ना तीन, पर्याप्तक, निवृत्ति अपर्याप्तक और लब्धि अपर्याप्तक, इनके गुणस्थान बताए गए, इन जीवों के गुणस्थान। पर्याप्तक के गुणस्थान कितने हो सकते हैं? एक से पांच गुणस्थान हो सकते हैं, जलचर थलचर नवचर के एक से पांच गुणस्थान हो सकते हैं। जलचर में कौन? राघव मत्स्यादि, ये समूर्छन पर्याप्तक भी हैं और लब्धि अपर्याप्तक भी हैं। लब्धि अपर्याप्तक जीवों को तो पहला गुणस्थान ही होता है और पर्याप्तक जीवों को पांच, एक से लेकर पांच गुणस्थान हो सकते हैं। देखो, मध्यम धर्मात्मा बन सकता है, कल सुना था ना, ये सभी तिर्यंच पक्षी हो, जलचर में मछली हो, थलचर में जो चलने फिरने वाले ये पंचेंद्रिय संघी जीव हैं, इनको एक से पांच गुण स्थान प्राप्त हो सकते हैं, यानी ये अनुवृत्ति बन सकते हैं, यानी ये दो प्रतिमा का पालन कर सकते हैं। वो पालन कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं, ये विचार तो आना चाहिए। हम कहां भूल कर रहे हैं, हमारे में कौन सी बात की कमी है, हैं?
साहस,
देखो त्रिरेंच होकर के साहस करता है, और त्रिरेंच अगर मध्यम धर्मात्मा बन गया, पांचवे गुणस्थान में आ गया, तो वह अपनी जगह महावृत्ति है, अपनी जगह महावृत्ति है, यानी अपनी जगह रहने वाले पर्वत को शिखर पर चढ़ गया हो, यही महानता है उसका, वही अंतिम मूर्त है, वही महान है, उससे आगे अब जा नहीं सकता, उसके आगे नहीं जा सकता, किंतु मनुष्य जा सकता है, मनुष्य एक कदम और जा सकता है, एक कदम और नहीं भगवान बन सकता है, भगवान ही नहीं सिद्ध भगवान बन सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है।
थलचर समूर्छन का उदाहरण,
थलचर समूर्छन पर्याप्तक समूर्छन का, अपर्याप्तक समूर्छन तो मलमूत्र में रहते हैं पक्षियों के, पर्याप्तक समूर्छन कहाँ?
और उनका पांचवा गुणस्थान हो,
हाँ वो समूर्छन से अगर जन्म ले लेंगे ना, तो फिर उनका अंगोपंग सभी आहार वो सब चलेगा, आहार ग्रहण करेंगे, इधर उधर घूमेंगे, उड़ेंगे, दिखेंगे, वो जैसे गर्भज पक्षी दिखते हैं वैसे पर्याप्तक
त्रिरेंज, पर्याप्तक त्रिरेंज थलचर, उदाहरण
थलचर की बात कर रहे हैं,
थलचर
में कौन है ये बात कर रहे हैं, हाँ थलचर समूर्छन थलचर मेंढक, मेंढक है, मेंढक संघी पंचेंद्रिय समूर्छन पर्याप्तक, जो ऊपर से प्रसाद से गिरते हैं ये सब पर्याप्तक हैं, शरीर बन गया उनका,
ये पांचवा गुणस्थान पा सकते हैं,
हाँ पंचम गुणस्थान तक, सोलहवें स्वर्ग तक जा सकते हैं
मेंढक,
अगर पंचम गुणस्थान हो जाए तो भी सोलहवें स्वर्ग तक जा सकते हैं, और चतुर्थ गुण स्थान भी हो जाए तो भी सोलहवें स्वर्ग तक जा सकते।
क्रिंच
का
ज्ञान कैसे होता है?
ज्ञान देखो उसको कोई संबोधते हैं तो भाषा को समझकर सम्यक दर्शन ग्रहण कर सकते हैं, अनुवृत ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे कितने ही त्रिरंज हैं जो मुनियों के उपदेश से रात्रि भोजन त्याग कर दिया। एक शियार ने रात्रि भोजन त्याग कर दिया, ऐसे कथानक आते कि नहीं? और शेर ने सम्यक दर्शन धारण किया, महावीर भगवान का जीव ही है, दसवें भाव में वो शिव पर्याय में थे, दो चारण विद्धि मुनि महाराज आकर के जब धर्म का उपदेश देते अहिंसा धर्म का, तो हिंसा का त्याग कर वह शाकाहारी बन गया, शेर शाकाहारी बन गया। महावीर भगवान दस भाव पहले शाकाहारी बने थे, दसवें भाव में तो मांसाहार थे लेकिन त्याग दिया था, वहां से विकास प्रारंभ हो गया। दस भाव लग गए तीर्थंकर बनने में, मांसाहारी था वो।
उनकी संख्या तो बहुत कम होगी ना महाराज जी? उनकी संख्या तो बहुत कम होगी। हम तो कहते हैं कि त्रिरंश पंचम गुण स्थान मनुष्य से ज्यादा होते हैं, तो वो उनकी संख्या ज्यादा कैसे होती है? तो संबोधता कौन है?
संबोधता कौन है
ताकि उनकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाए? ऐसा
त्रिरंशों की कौन से त्रिरंश? थलचर संगी पंचेंद्री त्रिरंश। हाँ प्रश्न करना पुनः।
पांचवें गुण स्थान में संगी पंचेंद्री त्रिरंश जो है मनुष्य से भी ज्यादा संख्या है। मनुष्य में जो पंचम
हाँ असंख्या
हाँ
ठीक है ना, असंख्यात है। असंख्यात कैसे होते हैं? ऐसा देखो
पंचम गुण स्थान कैसे प्राप्त करते हैं? असंख्यात है वो।
देखो
मनुष्य
कर्म भूमि में तो त्रिरंश मनुष्य से ज्यादा मिलते ही हैं, मनुष्यों से ज्यादा मिलते हैं, किंतु पंचम गुण स्थान तक जाने वाले त्रिरंश तो कर्म भूमि के ही होते हैं, भोग भूमि के नहीं होते है। दोनों संगी पंचेंद्री और संगी पंचेंद्री त्रिरंश कर्म भूमि में भी हैं, भोग भूमि में भी हैं। मनुष्य भी कर्म भूमि में भी हैं, भोग भूमि में भी हैं, परंतु मनुष्य भोग भूमि में रहने वाला मनुष्य संख्यात ही होता है, संख्यात मनुष्य होते हैं, और भोग भूमि में रहने वाले त्रिरंश असंख्यात होते क्योंकि इनका स्थान बहुत बड़ा है। ये असंख्यात द्वीप समुद्रों में रहने वाले संगी पंचेंद्री त्रिरंश थलचर और नवचर, थलचर और नवचर ये कितने हैं? द्वीप ही असंख्यात हैं। तो एक द्वीप की अपेक्षा से एक जीव को भी लोगे असंख्यात हो गया, और एक एक द्वीप में जीव असंख्यात रहते उस अपेक्षा से संगी पंचेंद्री त्रिरंश असंख्यात है। कर्म भूमि में मनुष्य संख्यात हैं, त्रिरंश भी संख्यात हैं, किंतु कंपेरिटिव कंपेरिटिव से देखने पर त्रिरंश ज्यादा हैं और मनुष्य कम है। देवगति में कौन जाते हैं? पंचेंद्री जीव, और पंचेंद्री देवगति में जाने वाले दो ही गति के जीव हैं, मनुष्य जाता है
और त्रिरंश,
या तो त्रिरंश जाता है। मनुष्य कितने जाते हैं?
संख्यात ही होते,
बहुत कम लोग स्वर्ग जाते हैं। संख्या तो वैसे ही इनकी संख्या कम है, उनके बराबर संख्या नहीं है। तो देव गति में भर्ती ज्यादा से ज्यादा त्रिरंशों की होती है, मनुष्यों की नहीं?
भोग भूमि से ज्यादा,
भोग भूमि से ज्यादा होती। क्या क्योंकि भोग भूमि के जीव तो नियम से देव गति को ही प्राप्त होते हैं। नियम से भोग भूमि के जीव मरण करने के बाद एक ही गति में जाते हैं, ये बात ध्यान में रखना है। एक ही गति में, किस गति में? देव गति में ही जाते हैं। अब फर्क कितना है, उनके गुणस्थान कितने हैं? ज्यादा से ज्यादा चार हैं। इन चार गुणस्थानों में मरण किन किन गुणस्थानों में है? पहले में भी मरण है, दूसरे में भी मरण है, तीसरे में नहीं है और चौथे में मरण है। इन तीन गुणस्थानों में मरण है। तो पहले गुणस्थान में यदि मरता है, भोग भूमिका तिर्यंच, मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दर्शन धारण नहीं किया है, उसका मरण हुआ पहले गुणस्थान में या दूसरे गुणस्थान में मरण हुआ, तो भी सम्यक दर्शन से रहित है क्या? नहीं। तो सम्यक दर्शन से रहित मरने पर उनको भी नियम से देव गति में ही जाना पड़ता है, परंतु मिथ्या तो होने के कारण से ये नियम से भवनत्रिक में जाते हैं। और सम्यक दृष्टि तिर्यंच भोग भूमि के सभी पहले और दूसरे, इन दो ही स्वर्ग में उनका जन्म होता है। पहले में भी जा सकते हैं, दूसरे में भी। दूसरे में जन्म लेंगे वहां की आयु अधिक रहेगी, पहले में जन्म लेंगे तो उनकी आयु कम रहेगी। ये बात ध्यान रखने लायक है। मनुष्यों से ज्यादा संख्या में स्वर्ग में देवगति में पूर्ति होती है त्रिरंचों से। त्रिरंच ज्यादा स्वर्ग जाते हैं। हाँ, स्वर्ग में तो अपने से असंख्यात गुना त्रिरंच स्वर्ग जाते हैं। वहां ज्यादा से ज्यादा जो देव हैं वो सब त्रिरंच गति से आए हुए लोग हैं। स्वर्ग में ज्यादा से ज्यादा जो देव रहते हैं त्रिरंच गति से आते हैं, और भवनत्रिक में जो जाते हैं वो पहले गुणस्थान से जाते हैं, और वे भी त्रिरंच गति से ज्यादा जाते हैं भवनत्रिक में। भोग भूमि की त्रिरंच, क्योंकि असंख्यात द्वीप समुद्रों में मिथ्या दृष्टि भोग भूमि की त्रिरंच अधिक है, सम्यक दृष्टि भोग भूमि की त्रिरंच कम है, ये कंपेयर करना चाहिए। और भवनत्रिक में जाने वाले जो असंख्यात द्वीप समुद्र की त्रिरंच भवनत्रिक में जाते हैं, वे त्रिरंच गति से ही आए हुए होते हैं। मनुष्य गति से भी जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन कम। मनुष्यों की वैसी संख्या ही संख्यात है तो कम जाएंगे उनकी अपेक्षा से। कुभोग भूमि के जीव कुभोग भूमि के जीव भी, भोग भूमि कुभोग एक साथ कथन होता है, दोनों को समझना चाहिए, सेम कथन है, कथन में कोई भी फर्क नहीं है। वो भी पहले गुणस्थान दूसरे गुणस्थान में मरण करते हैं तो नियम से भवनत्रिक में, और चौथे गुणस्थान में मरण करते हैं तो पहले दूसरे स्वर्ग में जन्म होता है।
महाराज, बरसात में गिरने वाले मछली, मेंढक और सर्प, ये असौधनी पंचेंद्रिय रहते हैं ना?
नहीं, सौधनी भी रहते हैं, असौधनी भी रहते हैं। यदि सौधनी हो, बरसात से गिर रहे हैं, यदि सौधनी हो पंचेंद्रिय हैं तो ये नियम से पर्याप्तक समूर्छन कहलाते हैं, पर्याप्तक समूर्छन। और यदि गर्भ से जन्म हुआ है तो गर्भज कहलाते हैं। गर्भज जीव तो नियम से पर्याप्तक ही होते हैं, गर्भज जीव तो नियम से पर्याप्तक ही होते हैं, किंतु समूर्छन जीव पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं। ठीक है।
महाराज जी, कर्म भूमि के मनुष्य को हरे को स्वर्ग चाहता है, हरे को स्वर्ग मांगता है, लेकिन जल्दी स्वर्गवासी होना नहीं मांगता है।
मांगता है वो, मांगना ही नहीं चाहिए।
मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ। ऐसे भाव इस धर्म भूमि के मनुष्य के क्यों होते
हैं? ये अनादिकाल से संस्कार है, हम सुख तो चाहते हैं लेकिन दुख का काम करते हैं और सुख चाहते हैं। हम सुख तो चाहते हैं, दुख काम तो दुख का करते हैं और चाहते हैं सुख। सुख मांगता है सुख मांगता है वो, लेकिन काम कौन सा कर रहा है ये नहीं देखता। वो कहता है मुझे पाप करते करते ही सुख मिले, ऐसा संभव है क्या? खाना तो ना खाएं और मेरी भूख मिटे, ये संभव है क्या? भूख मिटने के लिए खाना खाना ही पड़ता है। वैसे सुख अगर आप चाहते हैं तो सुख के कार्य भी करने पड़ते हैं, उन कार्यों पर विश्वास भी करना पड़ता है। अज्ञानी जीव क्या विचार करता है? ये विचार करता है धर्म क्या सुख देता है, वो क्या खाने पीने के लिए देता है, ऐसा विचार करता है, ऐसा ही कहता है ना।
धर्म से अपेक्षा,
धर्म क्या देता है, खाने पीने को देता है क्या? धर्म मत करो, कमाओ, खाओ, पियो, सो, मजे मस्ती से रहो और जाओ। ये अज्ञानी जीव का विचार है।
वो धर्म से अपेक्षा
और करता क्या है, वो सब कुछ बुरा कार्य ही करता है और फिर सुख कैसे मिलेगा? सुख दुख जो मिलते हैं वो धर्म से मिलते हैं ऐसा भी नहीं, धर्म करने वाले को मिलते हैं ये ठीक है, परंतु धर्म से मिलते हैं ऐसा नहीं। धर्म करते समय हमारा भाव शुभ रहता है, शुभ के कारण पुण्य का बंध होता है, पुण्य के बंध के कारण हमको भौतिक सुख मिलते हैं। तो हमारे लिए सुख दुख देने का निमित्त कर्म है, धर्म नहीं। धर्म तो मोक्ष देता है, धर्म तो हमारे लिए मोक्ष का कारण है, परंतु धर्म करने वाले जीव को स्वाभाविक रूप से पुण्य का बंध होता ही है, होता ही है, तो धर्म क्या करेगा? आप धर्म कर रहे हैं तो पुण्य का बंध होगा ही, आपको भौतिक सुख जो मिलेंगे वो धर्म से नहीं मिले, पुण्य कर्म से मिले। तो पुण्य कर्म का बंध शुभ भाव से हुआ और शुभ भाव के लिए क्या करना पड़ता है? धर्म करना पड़ता है। तो व्यक्ति क्या सोचता है, धर्म कौन करे? वो क्या खाने पीने को देता है क्या? खाने पीने को वही देता है इनडायरेक्ट में, आपको समझ में नहीं आता, वो इनडायरेक्ट में दे रहा है, डायरेक्ट में नहीं दे रहा। डायरेक्ट तो पुण्य दे रहा है, इनडायरेक्ट में धर्म ही सुख देता है, किंतु ऐसा एकांत नहीं, ऐसा एकांत नहीं, क्योंकि जो जो फिर धर्म करता है, सम्यक दर्शन आदि धर्म, रत्नत्रय आदि धर्म करता है, वही भौतिक सुख पाता है, ऐसा नियम बन जाएगा? तो ऐसा नहीं। ये भौतिक सुख तो, शारीरिक सुख तो मिथ्या दृष्टि जीव को भी मिलते हैं। वो कहां धर्म कर रहा है? अधर्म ही तो कर रहा है, तो उनको कैसे मिल रहे हैं धर्म के बिना? तो मंद कषाय से पुण्य का बंध होता है, उस पुण्य के उदय में भौतिक सुख मिलता है। परंतु अंतर इतना है, धर्मात्मा धर्म करके जो पुण्य कर्म का बंध करता है उसका विशेष सुख मिलता है, भौतिक सुख, शारीरिक सुख, क्वालिटी होती है, स्टैंडर्ड सीट मिलेगा स्वर्ग में, नीचे वाला नहीं मिलेगा। इंद्र का पद मिलेगा, ये धर्म का फल है। परंतु मिथ्यात्व के साथ कितना भी मंद कषाय कर लो, इंद्र नहीं बन सकोगे। इंद्र का नौकर बन सकते हैं, वहां आदेश में रह सकते हैं,
लोकपाल आदि,
हाँ लोकपाल आदि, तो लोक का पालन करते हुए बैठ सकते वहां जाकर के। ये विशेष धर्म का फल है, धर्म विशेष सीट पर बिठा देता आपको, और लास्ट में कहां बिठा देता है, मोक्ष में, सिद्ध परमेष्टि का पद भी देता है वो। इसलिए धर्म पर विश्वास करना चाहिए, धर्म का विश्वास ही सही विश्वास है, सही मनुष्य का जीवन है। ऐसा कभी भी भूल करके स्वप्न में भी नहीं सोचना चाहिए धर्म से क्या मिलता है, ये धर्म का उपहास है। जाने बिना धर्म का उपहास हम कर लेते हैं, धर्म को समझे बिना उपहास कर लेते हैं। उपहास यहाँ करते हैं इसलिए पर्वों में जाकर के उपवास करना पड़ता है, भूखे मरना पड़ता है। यहाँ उपवास, यहाँ यदि उपहास है तो वहां उपवास है, निश्चित है। इसलिए धर्म के विश्वास को मजबूत बनाओ, वो सब कुछ देगा, क्वालिटी का पुण्य मिलेगा, फल पुण्य का फल मिलेगा। परंतु ये सब किस लिए, ये भी तो सोचो, सुख 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 कर करके सूख जा रहे हो। केवल भौतिक सुख, जब देखो तब भौतिक सुख, मंदिर में जाओ भौतिक सुख, भगवान के पास जाओ भौतिक सुख चाहिए। इतने दास क्यों हो गए, भौतिक सुख तो शरीर के लिए है, उसके लिए इतना श्रम तुम क्यों कर रहे हो। तुम अपना सोचो ना, तुम आत्मा हो, तुम्हारे पास अलग निधि है, अलग संपत्ति है, उसके लिए जरा सुख 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 कर करके सूख जाओ ना एक भाव में। आत्म संपत्ति के लिए लड़ो ना, थोड़ा प्रयास प्रयास प्रयत्न करो। परंतु अज्ञानी जीव को यही पता नहीं है कि मैं शरीर से भिन्न जीव हूं, जो मैं हूं वो मैं हूं, ये नहीं समझता। ये शरीर ही मैं हूं, शरीर को अगर सुख मिला तो मुझे मिला, ये भेद विज्ञान का अभाव। छेड़ाला में कहा है कि नहीं, क्या कहा है, मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, कहा है कि नहीं। इन भौतिक पदार्थों में ही, चेतना चेतन पदार्थों में ही हम सुख मानते हैं, ये असली सुख नहीं है, ये जीव का सुख नहीं है, ये शरीर का सुख है। और शरीर का सुख सो जीव का सुख नहीं, जीव का सुख सो शरीर का सुख नहीं। जीव का सुख तो रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन धारण करो, ये जीव का सुख है। 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन होना चाहिए, उस पर विश्वास नहीं आता, यानी अपनी संपत्ति पर तो विश्वास नहीं। सम्यक दर्शन अपनी संपत्ति है, उस पर तो विश्वास नहीं है। और बैठे बैठे भौतिक सुख भी चाहता है तो कैसा चाहता है, मैं पाप कर्म तो नहीं छोड़ सकता लेकिन वो मिलना चाहिए, मांगता वो, ऐसा कैसा। शरीर सुख भी चाहिए तो कषाय को मंद करना पड़ेगा या तो धर्म करना पड़ेगा, दो में से एक, धर्म नहीं करते नहीं करो, कषाय तो मंद करो, इससे भी पुण्य का बंध होता है और भौतिक सुख मिलता है, कम से कम उतना तो करो। वो भी नहीं करता, कषाय भी मंद नहीं रखता, महाराज मुझे क्रोध कंट्रोल नहीं होता, मान कंट्रोल नहीं होता, क्या करना चाहिए, वो भी पूछने के लिए आता और उसकी दवाई दे तो ठीक से नहीं लेता।
परिणाम कैसे निकलेगा,
कौन सी दवाई दे, इसके अलावा कोई दवाई नहीं अपने पास। शास्त्र में भी तीर्थंकर भगवान ने ऐसा कोई दवाई नहीं दिया है कि पाप कर्म करते करते भी सुख मिलता है,
ऐसा कोई चमत्कार नहीं।
हाँ, ऐसा कोई चमत्कार दुनिया में आज तक नहीं हुआ है। और मांग जो रहती है वो अंधविश्वास के कारण रहती है। और वो भी अंधविश्वास क्यों होता है आप समझे? अंधविश्वास क्यों होता है उसका? वो सोचता है, महाराज हम तो देखते हैं दुनिया में सभी लोग पाप ही करते और पाप करके इतने श्रीमंत बन गए, तो पाप ही तो हमको श्रीमंत बनाता है, इसलिए उनको देखा देखिए हम भी पाप कर रहे हैं। ये कितना ज्ञान है, कितना अंधकार है ये जीवन में। पाप करने वाले आगे बढ़ रहे, आंखों के सामने दिख रहे हैं, लेकिन अज्ञानता कहां छिपी है ये विचारक नहीं बन रहा है। क्या विचार करना चाहिए? इस भव में कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है, सुखी बन रहा है, तो उसका पुण्य के बिना वो सुखी नहीं हो रहा है। वो पुण्य अभी का नहीं, वो पूर्व का है,
उदय में आया है।
पूर्व में बंधा हुआ पुण्य उदय में आया है, और यह पुण्य कर्म का उदय रहेगा तो आप कैसा भी पाप कर्म करो, कैसा भी पुरुषार्थ करो, चाहे पाप कर्म वाला पुरुषार्थ करो, चाहे पुण्य कर्म वाला पुरुषार्थ करो, पाप के कार्यों में उलझ जाओ, चाहे पुण्य के कार्यों में उलझ जाओ, चाहे समुद्र के किनारे जाकर मछली भी पकड़ लो और व्यवसाय कर लो, आपको पुण्य फल देगा। वो इस जन्म का पुण्य नहीं है, इस जन्म का तो आप अलग से बैंक बैलेंस बना रहे हैं। कौन सा बैलेंस बन रहा है, पाप का या पुण्य का? समुद्र के किनारे कितने लोग करोड़पति हैं, किसके आधार से हैं वो? हाँ, प्राणियों के व्यवसाय से है ना, मारते हैं दिन रात संगी पंचेंद्री प्राणियों को, करोड़पति तो बन गए वो। ऐसा करोड़पति बनना है क्या? रास्ता बहुत सुगम है, लेकिन वहां पर भी कुछ करना पड़ ही रहा है ना, पुरुषार्थ तो वहां भी लग रहा है। दिन भर जाता है, तूफान से नहीं डरता, नैया डूब जाएगी इससे कोई चिंता नहीं है, जाता है, जाल बिछाता है, खींच के लाता है। संगी पंचेंद्री सम्मूर्छन पर्याप्तक अपर्याप्तक सब जीवों को ले आता है, मारता है, व्यवसाय करता है, करोड़पति बनता है, परंतु पूर्व भव का पुण्य सब डूब रहा है और नया पाप कर्म और ऐड हो रहा है, और ये दोनों ही मिलकर के जब उदय में आएंगे तो हाय 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 करते फिर चार गति में भटकने पड़ेंगे। ऐसा मत सोचना कि पाप करने वाला साहूकार बन रहा है तो पाप करना धर्म है। हाँ, पाप करने करना ही धर्म है, क्योंकि पाप के बिना सुख नहीं मिलता, इसलिए पाप करना ही धर्म है। पाप कभी भी धर्म नहीं हो सकता, ये गारंटी है। मंद कषाय रहना और मंद कषाय के साथ साथ एक धर्म को भी स्वीकार करना, ऐसा अभी करोगे और फिर भी आपको सुख के दिन नहीं आ रहे हैं तो डरना नहीं। आप बहुत जल्दी घबराते, मैंने तो इतना धर्म किया, 50 साल गए, अब तक दरिद्र हूं। सम्यक दर्शन धारण करो कहा, वो भी कर लिया। अनुवृत्ति बनो कहा, वो अनुवृत्ति भी बन गया, लेकिन सुख के दिन ही नहीं आ रहे। प्रतीक्षा में खड़ा हूं, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, धर्म की महिमा कब प्रकट होगी, धर्म धारण किया है, आस्था के साथ धारण किया है, कब आएगा कब आए, प्रतीक्षा में खड़ा हूं, नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो क्या कारण है, ये प्रश्न। सुख के दिन नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है? पूर्व का बैलेंस चाहिए कि नहीं? का बैलेंस व्यक्ति के पास नहीं है, वह धर्म कर सकता है, पापी धर्म कर सकता है, पुण्यात्मा ही धर्म करता है, ऐसा नहीं। पुण्यात्मा पापी धर्म करने के लिए समान पात्र हैं दोनों। धर्म करने की शक्ति पापी के पास भी है और पुण्यात्मा के पास भी है। अभी धर्म करने लग गया तो पूर्व भव के पुण्य के फल से जो आ रहा है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तुम धर्मात्मा हो, पापी हो या पुण्यात्मा हो, तुम्हारा वर्तमान का भव संकट में हो या सुख में हो, धर्म अगर कर रहे हैं तो आपको दुख भी मिल सकता है, सुख भी मिल सकता है वर्तमान में, क्योंकि अभी जो आप भर रहे हैं वो लौट के आना चाहिए ना। अभी तो गन्ना डाल दिया है फैक्ट्री में, अब दूसरे मिनट में ही आप शक्कर के इंतजार कर रहे हैं, समय लगेगा कि नहीं? यहां अभी गन्ना डालो, वहां पर दो दिन बाद शक्कर मिलेगा। कितने दिन बाद मिलता है मालूम नहीं हमको, पर ऐसा एकाएक ही नहीं मिलता एकदम।
प्रोसेस कम से कम 8 दिन तो लगते हैं।
8 दिन तो लगते हैं कि नहीं? तो गन्ना फेंकते समय फेंकते रहे और दूसरे दिन प्रतीक्षा की, नहीं आ रहा है शक्कर, तीसरे दिन की नहीं आ रहा है, चौथे दिन की नहीं आ रहा है, पांचवें दिन की नहीं आ रहा है, ये शक्कर आने वाला ही नहीं है, फैक्ट्री बंद करो। पांचवें दिन में स्टाफ करने लगे, इंतजार तो करो, कम से कम 8 दिन लगता है शक्कर गिरने के लिए। और दूसरी बात, एक बहुत बड़ी बात है ध्यान में रखना, अभी धर्म किया हुआ तत्काल फल मिले उसका भी रास्ता है, लेकिन हम रास्ते पर चलते नहीं और उस रास्ते पर विश्वास रखते नहीं और उस संबंधी पुरुषार्थ हमारा होता नहीं है, पुरुषार्थ में कम पड़ते हैं। वो कैसे? तो धर्म करते समय इतना विशुद्ध भाव होना चाहिए, इतने परिणाम विशुद्ध होना चाहिए, जितने विशुद्ध परिणाम रहेंगे उतना ही प्योर क्वालिटी का पुण्य बंधता है। और ये पुण्य रूपी कर्म का ये सिद्धांत है, तुम जितने विशुद्ध परिणामों से बुलाते उनको उतने जल्दी फल देते हैं। उसका स्थिति बंध कम रहता है, अनुभाग बंध अधिक होता है। ये महावीर भगवान की वाणी है, नहीं हम कर्म सिद्धांत को नहीं मानते, उस पर विश्वास नहीं होता। नहीं होता तो बैठ जाओ, तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे। परिणाम जितने विशुद्ध रहेंगे ना उतना प्योर क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और उसका फल मिलने का, पुण्य उदय में आकर फल देने का जो काल है वो बहुत शॉर्ट रहेगा, जल्दी मिलेगा। तो ऐसा काम करो ना, पूर्व में जो बंधे हुए पुण्य हैं उनका भी जल्दी फल मिलने के लिए भावों को विशुद्ध रखना पड़ेगा। और विशुद्ध भाव धर्म है और इस धर्म को करने से मिलता ही है, जल्दी मिलता है। जरा धीर तो रखो, नहीं नहीं आज हमने दे दिया है तो कल मिलना चाहिए, तभी हम विश्वास करेंगे धर्म पर, नहीं तो हम विश्वास नहीं करेंगे। अब देखो आज दिया और कल के दिन ही प्रतीक्षा में बैठा है, कैसे आएगा वो? और आज कैसा काम किया, कल ही मिलना चाहिए, ये कांक्षा भाव है। और ये कांक्षा भाव विशुद्ध परिणाम है क्या? तो गलती है क्या? नहीं, ये कामना के भाव आत्मा के भावों को मलिन बना देते हैं कि विशुद्ध बना देते हैं? मलिन बना देते हैं। तो मलिन भाव के साथ तुमने धर्म किया और कल ही फल मांग रहे हैं, उसका स्थिति बंधाई अधिक पड़ गया है, यानी बहुत दिन बाद फल मिलेगा। मांगोगे तो बहुत समय बाद मिलेगा, नहीं मांगोगे तो कल ही मिलेगा, पर ऐसा कोई करता नहीं है, ऐसा कोई नहीं करता, ऐसा पुरुषार्थ ही नहीं करता। भावों की विशुद्धि को बढ़ाने का प्रयत्न कोई नहीं करता। आज इस अपेक्षा को लेकर के मंदिर जाता है कि भगवान आज आ रहा हूं, आप तो महान हैं, सब सामग्री ला करके रखा है आपके लिए, मंदिर में आ रहा हूं, 9 बजे तक बिल्कुल हाजिर रहूंगा वहां। भगवान को खुशामदी कर रहा है, भगवान को खुश करने जा रहे। भगवान को खुश मत बनाओ, आत्मा को खुश बनाओ, आत्मा में खुशहाली आ जाए, आत्मा के परिणाम उज्ज्वल हो जाए। मंदिर जाने से पहले ही शर्त रख करके जा रहा है, भगवान आज खुशी का दिन है, बहुत लाभ हुआ है, ये जो कुछ भी लाभ हुआ है ना आपने ही दिया है और आपकी कृपा है, इस विश्वास पर अगला और कमाने के लिए और ले जा रहा है। क्या ले जा रहा है? जितना कमाया है भगवान, आधा मेरा आधा तुम्हारा, पार्टनरशिप, भगवान को भी पार्टनरशिप बना रहा है, भगवान को भी कर्जा दे रहा है उसका ब्याज मांगने के लिए। तो भगवान के पास जाकर के, ये भगवान आपने हमने 50 दिया है, कल 100 आना चाहिए, मांग तो रख रहा है, तो ब्याज मांग रहा है ना भगवान से। तो ये कामना, ये आशा देने के साथ साथ पाने की आशा, ये हमारे परिणामों का विकार है या विशुद्ध परिणाम है? बहुत बड़ा विकार है, इससे पापाश्रय होगा। कामना से पापाश्रय होगा, कामना के त्याग से पुण्याश्रय होगा, क्वालिटी वाला पुण्य आएगा। ऐसे पुण्य को हम नहीं बांध पाते। हम प्रयत्न करें कि ऐसा धर्म न करें जो कामना वाला है, किसी के सामने शर्त न रखें। जिनवानी
प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती अतः कहा कि जिन वाणी जयवंतो मां जग में तब तक जब तक सु